And man is compared to a butter pot. Therefore, man should avoid associating even with his own daughter in a secluded place. Similarly, he should also avoid association with other women. One should associate with women only for important business and not otherwise. Purport. If a butter pot and fire are kept together, the butter within the pot will certainly melt. Woman is compared to fire and man is compared to butter pot. However advanced one may be in restraining the senses, it is almost impossible for a man to keep himself controlled in the presence of a woman, even if she is his own daughter, mother, or sister. Indeed, his mind is agitated even if one is in renounced order of life. Therefore, Vedic civilization carefully restricts mingling between men and women. If one cannot understand the basic principle of restraining association between man and woman, he is to be considered an animal. That is the purport of this verse. Nanvagni pramada nama ghratakumbha samapuman satamapi raho jaihyad anyada yavadarthakrit. Woman is compared to fire and man is compared to butter. Stri ki tulna agni ke saath ki gai hai. Aur purush ki tulna ghee ke saath. Therefore, a man should avoid associating even with his own daughter in a secluded place. Isiliye, manush ko, purush ko, striyon ka sang, ya striyon ka ekant mein sang, talna chahiye, phir wo unki khud ki beti hi kyon na ho. Similarly, he should also avoid association with other women, aur saath hi saath purushon ko aur striyon ka sang bhi talna chahiye. One should associate with women only for important business and not otherwise. Purushon ko koi vishesh anivarya karya hetu hi striyon ke saath milna chahiye ya vartalap karna chahiye, not otherwise, aur anyatha nahi. Perfect society, four spiritual classes. Sabhya samaj, ye is adhyay ka naam hai, shirshak hai, perfect society. To perfect society ke liye kuch niyamavali hai, कुछ विधि निषेध की बातें हैं. आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो. क्या करने से और क्या नहीं करने से वो परफेक्ट सोसाइटी, एक पूर्ण और सभ्य समाज की स्थापना हम कर सकते हैं. वैसे परफेक्ट सोसाइटी मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस. सभ्य समाज मतलब ही अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ है, अंतर्राष्ट्रीय, कोई रीजनल या लोकल नहीं, मॉरिशस लिमिटेड नहीं, सारे विश्व भर में ऐसे मनुष्य, ऐसे मनुष्यों का समाज जो कैसा हो, परफेक्ट हो, और परफेक्ट मतलब क्या, कृष्ण कॉन्शियस हो। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब क्लियर कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मतलब शुद्ध भावना, शुद्ध चेतना। तो मनुष्य की चेतना जब तक शुद्ध नहीं है तब तक वो सभ्य नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता, परफेक्ट नहीं हो सकता। पशु में और मनुष्यों में भावना का अंतर है, भाव का अंतर है, चेतना का अंतर है। पशु का अपना पशु भाव है, पशु वृत्ति है, और वैसे मनुष्य को भी कहा है मनुष्य प्राणी। मनुष्य का शरीर तो मिला है लेकिन वो है कैसे, अब भी वैसे प्राणी है, मनुष्य प्राणी है। और प्राणी मतलब उसकी चार प्रवृत्तियां है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो इन चार जो सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम, कुछ बातें सामान्य है पशु में और नरों में, और वो सामान्य बातें क्या है, ये चार बातें, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। धर्मों भी एको अधिको विशेषो कहा है, और धर्म ही एक अधिक बात है या विशेष बात है मनुष्यों के लिए। जो जितने भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, तो उसमें से एक योनि के लिए धर्म है, अन्यों के लिए नहीं। तो फिर मनुष्य तो मनुष्यता बनेगा या कहलाएगा जब वो धर्म को अपनाएगा, और धर्म को अपनाने से फिर उस मनुष्य प्राणी में अब भी कोई पशु वृत्ति शेष है, बची है, तो वो भी समाप्त होगी। तो इन चार पशु वृत्तियों में से एक पशु वृत्ति है ये मैथुन, जिसकी चर्चा आज के श्लोक में हो रही है। ये विषय कोई आसान नहीं है, या जो जो विषयी है उनके लिए निश्चित ये विषय कठिन है। विषय का विषयी, विषय विषय में जो तल्लीन है विषयों में, उनको विषयी कहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, विषय छाड़िया सिर से माजिया, व्हाट ए बोलो हरि हरि। विषय को छोड़ो और क्या करो, बोलो हरि हरि, बोलो हरि हरि। वही नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषय से मैं कब मुक्त होऊंगा ताकि मैं वृंदावन में रह सकता हूं। एक विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मन, कबे हम हेरी बो श्री वृंदावन। हे प्रभु, मैं विषयों से कब मुक्त हो पाऊंगा ताकि मैं वृंदावन में रह सकता हूं या वृंदावन का दर्शन कर सकता हूं, विषय छाड़िया शुद्ध कबे शुद्ध होवे मन, मेरा मन कब शुद्ध होगा, मेरी चेतना कब शुद्ध होगी ताकि मैं वृंदावन को देख सकूंगा, वृंदावन में राधा कृष्ण की लीला का दर्शन कर पाऊंगा। तो हमारे भगवान के दर्शन में विघ्न अगर कोई है तो ये विषय है। विषय तो कई सारे विषय है, इंद्रियों के विषय है, पांच इंद्रिया है तो पांच विषय है, सेंस ऑब्जेक्ट्स जिसको हम कहते हैं, सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे ही सेंस ऑब्जेक्ट्स में बहुत बड़ा विषय है, बिग सब्जेक्ट मैटर है। स्त्री के लिए मनुष्य बड़ा सब्जेक्ट मैटर है और पुरुष के लिए स्त्री बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है। विषय मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल में उसको विषय कहते हैं, हम तो कहते थे हमारे जब हम पढ़ते थे, आज कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, आज फिजिक्स, आज सोशियोलॉजी, आज ये विषय होगा, ये विषय, तो हम लोग विषय सब्जेक्ट्स। तो ये स्त्री पुरुष ये बहुत बड़ा विषय है एक दूसरों के लिए। तो विषयी होना, विषयी विषय में लीन होना, तल्लीन होना, उसको विषयी कहते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसाम, पुनः विषय आ गया। देखिए गीता के प्रारंभ में ही भगवान कह रहे हैं, दूसरा ही अध्याय चल रहा है भगवान के, ध्यायतो विषयान पुंसाम, पुंसाम मतलब मनुष्य, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ गए। ध्यायतो विषयान पुंसाम, स्त्री पुरुष क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान शब्द तो वही है, ध्यान, ध्यान मतलब किसी एक बात पर या व्यक्ति पर, किसी केंद्र पर हम अपना मन एकाग्र करते, एक अग्र, केशाग्र मतलब पॉइंट, केश मतलब बाल का एक छोटा सा केशाग्र जैसे होता है, या कुश अग्र, अग्र मतलब पॉइंट, पॉइंटेड। तो ध्यान की ये परिभाषा है, ध्यान में कोई कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, कोई ध्यान का विषय होता है, उस पर व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित करता है, अपने मन को केंद्रित करता है, अपनी इंद्रिया भी, अपनी चेतना भी, अपनी बुद्धि भी उसी में लगाता है जिसका वो ध्यान कर रहा है। तो भगवान के लिए ध्यायतो विषयान पुंसाम, और जब व्यक्ति ध्यान करता है विषय का, ध्यान विषयी मतलब मनुष्य हो गया या स्त्री पुरुष, विषयी जब विषय का ध्यान करता है, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषूपजायते, क्या होता है, संगह तेषूपजायते, उसमें व्यक्ति आसक्त होता है, जिसका भी ध्यान करेगा उसमें आसक्त होगा। और ऐसे संग से, ऐसे संग से, एक होता है संग और दूसरा होता है संघ, संघ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत क्या है, संघ है, संघ। इस संघ में, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में संघ प्राप्त होता है, साधु संघ प्राप्त होता है, दो अलग अलग बात है, एक संघ है एक संघ है, क क ख ग घ, एक ग है दूसरा घ है। तो हुआ ध्यायतो विषयान पुंसाम संग संग संग, या कहे संग मतलब एसोसिएशन, संग संगस्तेषु उपजायते, ऐसे संग से जिसका भी ध्यान किया, ध्यान का परिणाम ध्यान का फल क्या है, जिसका वो ध्यान करेगा संगस्तेषु उपजायते, उस संग से उस व्यक्ति से या जो जिसका भी ध्यान कर रहा है। बिल्ली भी ध्यान करती है किसका, या दूध का भी, बिल्ली आंख बंद करके बैठी रहती है दूध के बर्तन के बगल में ही, मानो उसका कोई, दूध से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी आंखें तो बंद है, मैं दूध की ओर देख भी नहीं रही हूं, बिल्ली कह सकती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान कहां होता है, चित्त कहां होता है, दूध में लगा होता है। कभी कभी बगुला होता है, बगुला कहते हैं, वो पानी में खड़ा रहता है जस्ट लाइक अ योगी, लेकिन उसका ध्यान किस पर होता है, मछली पर होता है। आपने देखा है पानी में खड़े हो जाते हैं और आंखें बंद करते हैं, या थोड़ा आधी आंख खुली आधी बंद होती है योगी की तरह, पूरा बंद करेंगे तो मछली कब आती तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आंख आधी बंद करने से मछली सो सकती है, ये तो सोया हुआ कोई या कोई स्टैचू ही है, मूर्ति ही है, ये तो मुझे खाने का कोई प्रश्न नहीं है। तो वहां जब वो स्विमिंग चलेगा वहां, तो इतने में वो बगुला क्या करता है, तो जिसका भी ध्यान करता है, तो फिर वो पशु ध्यान करता है, बिल्ली ध्यान करती है, या मनुष्य भी ध्यान करता है किसी एक का, तो ध्यान करते 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 उसी में आसक्त होता है, संगस्तेषु उपजायते, उत्पन्न होता है, संग उत्पन्न होता है। और फिर आगे आप तो जानते ही हो ये सब बातें, आप तो साइंटिस्ट हो, मतलब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, ये शास्त्र है, ये साइंस है, जिसको वो जानता है तो वो साइंटिस्ट कहलाएगा, ये वो शास्त्रज्ञ हो गया। आप भी शास्त्रज्ञ हो, रसायन के नहीं, या और भूगोल खगोल के शास्त्रज्ञ आप नहीं हो, आप तो आत्मा के और परमात्मा के शास्त्र को जानते हो, शास्त्रज्ञ तो आप हो, गीता का आप अध्ययन किए हो। तो गीता के प्रारंभ में कही जा रही हुई ये बात है, संगस्ते उपजायते, फिर संगात संजायते कामः, उस जब आसक्ति प्राप्त हुई तो उसी के साथ पहले ध्यान किया, ध्यान से उसमें आ गए हम लोग संग और आसक्त हो गए, फिर आसक्ति से काम वासना प्रबल होगी, काम प्रबल होगा, और फिर उस विषय का जो उपभोग लेने का प्रयास व्यक्ति करता है, तो स्त्री के संग में पुरुष के संग में शुरुआत में तो संग ही होता है, या पहले वैसे या कितनी सात बातें होती है, और फिर आठवीं बात होती है जिसको संभोग कहते हैं, संभोग, भोग और संभोग, स्त्री पुरुष का संभोग, वो तो आठवां सोपान हुआ, उसके पहले अलग अलग सात बातें होती है, इसमें दर्शन भी कहा है, इस शब्द का उपयोग है, दर्शन और स्पर्श भी कहा है, और बातचीत भी कही है, फिर कुछ प्लानिंग भी कहा है, फिर ये सब तो हुआ। अवैध स्त्री संघ जिसको कहते हैं, जो शास्त्र अवैध स्त्री संघ, इलिसिट सेक्स, ये जो इसका भी जो शास्त्र है, इसके आठ अंग बताए हैं। जैसे वैसे अष्टांग भी है, अष्टांग साष्टांग अंग, इसके भी आठ अंग है। तो सात सोपान के उपरांत फिर आठवां, फिर संभोग। तो यह जो बातें कही गई है यही से प्रारंभ होता है, संग से, बगल में बैठने से, फिर स्पर्श से, बातचीत से कुछ, फिर धीरे धीरे ये शनै शनै ये जो काम की वासना इतनी प्रबल होती है, इसलिए अर्जुन को प्रश्न पूछना पड़ा, अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, क्यों है, क्या है वो बात, हे भगवान, कि हम नहीं चाहते हुए भी अनिच्छनपि बलादिव, कोई बलपूर्वक हमसे कोई गलत सलत कार्य करवाता है, वो कौन सी शक्ति है, कौन सी व्यक्ति, क्या है, ये थोड़ा आप स्पष्टीकरण दीजिए। इसकी शुरुआत कैसी है? तीसरा अध्याय भगवान कह रहे हैं। तो उसके जवाब में कहा, काम ईश क्रोध ईश रजो गुण समुद्भव। हा, इसका पूछ रहे हो, अनिच्छनपि बलादिव नियोजितः, बलपूर्वक हमसे कोई पाप करवाता है, पापम चरति पुरुषः अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापम चरति, पापम चरति चरता है, मनुष्य चरता है, जैसे गाय चरती है ना, गाय चरती है तो गाय घास खाती है, तो यह मनुष्य चरता है तो क्या खा रहा है, पापम चरति, पाप को चरता है, पाप का, जैसे गाय को हम देखते दिन भर चरती रहती है, तो मनुष्य भी वैसे दिन भर पापम चरति पुरुषः, पुरुष या स्त्रिया क्या करती है, दिन भर चरती रहती है, क्या चरती है, क्या चरता है, पापम चरति पुरुषः। तो ऐसे क्यों करते हैं हम पाप, कभी कभी चाहते भी नहीं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, नहीं 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 नहीं, नो नो नो, लेकिन हम लोग पाप कृत्य कर बैठते ही है, मानो कोई और शक्ति है हमसे भी अधिक बलवान जो हमसे पाप करवाती है, अनिच्छनपि। तो भगवान ने कहा, हा हा, तुमको तो पता नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं, मेरी तो शक्ति है, मेरी तो युक्ति है, और वो है क्या, काम ईश क्रोध ईश रजो गुण समुद्भव, समुद्भव उत्पन्न होता है, रजोगुण का ये फल है, जिसे रजगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होता है, विद्धि एनम ही महाशनो महापापमा, विद्धि एनम ही वैरिनम, नोट करो नोट करो, नोटबुक लाए हो, अर्जुन कर भगवान कह रहे, विद्धि प्लीज अंडरस्टैंड, समझ जाओ, समझो, समझे तुम, विद्धि एनम ही वैरिनम, एनम ये जो है काम तुम्हारा वैरी है, विद्धि एनम ही वैरिनम, नंबर वन, एक नंबर का तुम्हारा शत्रु है ये काम, संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः, कामात फिर क्या क्रोधो भी जायते, फ्रस्ट्रेशन एंगर वगैरह जो है क्रोध, चिड़चिड़ा व्यक्ति बन जाता है, पछतावा का अनुभव करता है, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे करते रहता है परिवार में ही, एक परिवार दूसरे परिवार के साथ, एक समाज दूसरे के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ। क्यों? कामात क्रोध हो भी, कोई काम वासना है, कई प्रकार की काम वासना, उसमें प्रधान काम वासना स्त्री पुरुष के आपस में जो काम, जिसको ये संसार आजकल क्या कहता है, यही प्रेम है और यही भ्रम है। संसार में सबसे बड़ा अगर कोई भ्रम है, इस काम को ही प्रेम कहना, बस प्रेम को समझना इतना आसान है। षड गोस्वामी वृंद प्रेम को समझे थे, सुखदेव गोस्वामी प्रेम को समझते हैं, गोपियां प्रेम करती हैं भगवान से, कृष्ण के इंद्रिय प्रीति के लिए किया हुआ कार्य प्रेम है, और आत्म इंद्रिय प्रीति, आत्मेंद्रिय प्रीति के लिए किया हुआ कार्य काम है। छोटी सी परिभाषा हो गई, डेफिनेशन, प्रेम क्या है, काम क्या है। तो भगवान के इंद्रियों के लिए, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते या प्रेम उच्यते, प्रेमा भक्ति उच्यते, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, हमारी इंद्रिया, इसमें मन भी बुद्धि भी क्या करती है, कायेन मनसा वाचा केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगी जब कार्य करते हैं, और योगी कैसे कार्य करते हैं, भक्ति योगी कार्य करते हैं, कायेन शरीर मनसा मन बुद्धि से भी, बुद्धि का भी काम लेते हैं, उपयोग करते हैं, इंद्रियों का भी उपयोग करते हैं। मंदिर मार्जनादो, जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण, कई सारे उदाहरण, और इन तो ये करते क्या है, भक्ति करते हैं, ये प्रेम कर रहे हैं, भगवान के प्रति जो अपना प्रेम है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं इन अलग अलग कार्यों से। भगवान के प्रति का जो प्रेम है, कोई केवल लिप सर्विस नहीं है, लिप सर्विस मतलब केवल कहने की बात नहीं है, करने की बात है, सोचने की भी बात है, केवल बैठे हैं और वो भी भगवान की चर्चा हो रही, तो वो भी कार्य है, वो भी सेवा है, उसमें उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन गोपियां, अन्य कई सारे भक्त जिनके चरित्र हम जानते हैं या पढ़ते हैं, हमने देखा है कि वे सारे अपने इस पूरा जो एग्जिस्टेंस उनका जो है, अस्तित्व है, वो सभी का उपयोग करते हैं प्रभु की सेवा में, और ये हुआ प्रेम। और उसके विपरीत तो कृष्ण के स्थान पर अगर हमने स्त्री को बिठाया है, कृष्ण के स्थान पर हमने किसी साधारण पुरुष को ही बिठाया है और उनकी सेवा में हम समर्पित है अपनी कायेन मनसा वाचा, तो वो हो गया काम हो गया। तो ये प्रेम और काम, प्रेम तो अलौकिक होता है, कैसा होता है, अलौकिक, अलौकिक मतलब लौकिक नहीं, मतलब इस लोक का नहीं, इस भौतिक जगत का नहीं है प्रेम। प्रेम तो हुआ राधा कृष्ण, गोपी कृष्ण या अन्य भक्त और कृष्ण के मध्य के जो व्यापार है, व्यवहार है, लेन देन है, आदान प्रदान है, वो सब प्रेम की बातें हुई। भगवान के अपने आध्यात्मिक जगत से प्रेम से प्रेरित होके वहां भक्त कार्य करते हैं, गोपियां भगवान से प्रेम करती है, काम नहीं, काम का गंध भी नहीं है उनके जीवन में, उनके चिंतन में, उनके कार्य में। इसीलिए भी वैसे उनके कार्यकलापों का हम चिंतन करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। जो रास पंच अध्याय, पांच जो अध्याय है रास क्रीड़ा के श्रीमद् भागवतम में, 29, 10वें स्कंद का 29, 30, 31, 32, 33, ये जो पांच अध्याय है, उस पांच अध्याय के अंत में कहा है कोई व्यक्ति ये भगवान की रास क्रीड़ा को का श्रवण करे, भली भांति समझे, आचार्यों की मदद से, गुरुजनों की मदद से, वैष्णव के संग में, तो वही एक औषधि का कार्य करेगा। अगर स्त्री पुरुष रोगी है, भवरोगी है, काम के रोगी है, काम से ग्रस्त है, त्रस्त है, तो इस रोग से मुक्त होना है तो औषधि क्या है? राधा कृष्ण की जो लीला, गोपी कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करो, सही परंपरा में, सही श्रोत या उचित व्यक्ति की, वैष्णव की मदद से। तो काम के स्थान पर प्रेम की स्थापना होगी और फिर ऐसे व्यक्ति भगवान के जगत में, धाम में प्रवेश करने की क्षमता रखेंगे, प्रवेश करने के लिए पात्र बनेंगे, क्योंकि वे भी अब भगवान से प्रेम करना सीखे हैं, वे काम से मुक्त है। काम्यानाम न्यासम संन्यासम, संन्यास की परिभाषा कहते हुए भगवान 18वें अध्याय में कहते, काम्यानाम ना न्यासम संन्यासम, काम वासना जिसने त्यागी है वो सन्यासी है। और भी कई सारी बातें कही जा सकती थी किंतु भगवान ने एक ही बात कही है। ओ सन्यासी की क्या पहचान है? काम्यानाम न्यासम संन्यासम, जो काम वासना से मुक्त है वो है सन्यासी। वैसे जिस दिन वो सन्यास दीक्षा ग्रहण करता है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसी दिन वो मुक्त हो चुका है, लेकिन उसने कुछ लक्षण ऐसे जरूर दिखाए हैं, उसके कार्यकलाप जरूर ऐसे हैं, इससे आशा की जा सकती है कि आने वाले कुछ वर्षों में या ये और भी तरक्की करके ये काम वासना से मुक्त हो सकता है। सेम थिंग अप्लाइज, हम लोग ब्राह्मीण दीक्षा भी देते हैं किसी को, इसका अर्थ मतलब ये नहीं होता है कि जब वो यज्ञ में बैठा है, स्वाहा स्वाहा कर रहा है, तो फुल फ्लेज ब्राह्मीण उसी क्षण बन चुका है। शमहा दमहा तपहा सौचम क्षांतिरार्जवमेव च, ज्ञान विज्ञान सहितम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता के 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 42 भगवान ब्राह्मण के कर्म और लक्षण बता रहे हैं, लेकिन उसने कुछ लक्षण ऐसे दिखाए हैं ताकि आने वाले कुछ वर्षों में, भविष्य में आगे बढ़ता ही रहेगा तो ये कौन बनेगा? कौन बनेगा? ब्राह्मण बनेगा। उसी प्रकार ये व्यक्ति आगे सन्यासी भी बनेगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस, आप शायद कल्पना तो कर ही सकते हो। तो काम्यानाम न्यासम संन्यासम, तो क्या बाकी जो वानप्रस्थी है, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, क्या उनको काम का न्यास, काम से मुक्ति, क्या वो अनिवार्य नहीं है? वैसे सभी को है। हम भगवान के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, हर जीवात्मा को काम से मुक्त होना ही होगा, फिर वो स्त्री है या पुरुष, वो गृहस्थ है या ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी है या सन्यासी, जब तक वो काम वासना से मुक्त नहीं होगा तब तक भगवान के धाम में प्रवेश नहीं है। थोड़ा भी लवलेश गंध भी कई है काम का, कई पर मन में या बुद्धि में या इंद्रियों में, भगवान कहते हैं पहले तो कहा कि हां ये जो काम है ना, काम यही तो है जो पापम चरति पुरुषा, पाप करवाता है लोगों से, मनुष्यों से, स्त्रियों से, पुरुषों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से, ईसाइयों से, और कोई निधर्मी है ईश्वर को नहीं मानने वाला, सभी से यही तो पाप, यही तो काम पाप करवाता है। इतना तो जवाब में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, तीसरे अध्याय के अंत में आप पढ़िएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम शास्त्रज्ञ बनना चाहते हैं और ज्ञान विज्ञान सहितम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तो ये बातें हमें जाननी चाहिए। तो भगवान कहते हैं हां ये काम तो आपने कहा, हमारे पाप के पीछे तो ये काम ही तो प्रेरित करता है, तो ये इसका निवास स्थान कहां कहां है? जैसे एनिमी कौन है तो समझ गए, ठीक है, लेकिन और क्या जानना चाहेगा शत्रु एनिमी के संबंध में? कहां रहता है, कहां है उसका बेस? फिर एक देश क्या कर रहा है, स्पाइस को भेजते हैं, स्पाइस जाते हैं, अगर जानकारी नहीं है तो जासूस जाएंगे, कुछ स्पाइस जाएंगे, वेशभूषा बदली करके वहां की भाषा सीखेंगे, दाढ़ी लगाएंगे, या कुछ ऐसे दूरबीन लेके जाएंगे, दूर से देखेंगे पेड़ में बैठ के कितने दूर है, कितना, और लोकेशन का भी पता चला एनिमी का, फिर कितना बलवान है, किस प्रकार के विमान उनके पास है, फाइटर्स उनके पास, अधिक सोल्जर्स है कि अधिक सेना के दल है, ये जो वायु सेना है कि पैदल सेना है कि जल सेना है, तीन प्रकार की सेना होती है, एक भूमि पर, एक समुद्र में, एक आकाश से, तो इस तीन प्रकार, तो हुआ तो सारी जानकारी, क्योंकि उसी के अनुसार हमें तैयारी करनी होगी। और शत्रु अगर साधारण है तो फिर छोटी सेना से काम चलेगा, और सेना उनकी बड़ी है, हमने पता तो लगवाया लेकिन हमारी सेना अब वैसे छोटी है, तैयारी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस वक्त लड़ाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, और रिक्रूटिंग होगा और मॉरिशस के लोगों का सेना में जुड़ाया जाएगा, उनको और ट्रेनिंग दिया जाएगा, इंडिया से कोई मदद ली जाएगी, अफ्रीका के साथ, मादागास्कर के साथ युद्ध करना है, तो विथ फुल नॉलेज हमला किया जाता है। कोई फुलिश मूर्ख व्यक्ति या देश ही बिना जानकारी प्राप्त किए हमला करेगा। तो ये जो काम नाम का शत्रु है, तो भगवान ने एक तो बात कही, सुनो सुनो समझो अर्जुन, वैसे ये तुम्हारे शत्रु जितने हैं उसमें से सबसे बलवान शत्रु तो कौन है, ये काम है। विद्धि एनम ही वैरिनम, प्लीज नोट दिस, सबसे महान बलवान शत्रु तो काम है, काम वासनाएं। और फिर भगवान कहते हैं इस शरीर में तीन स्थानों पर इंद्रियानि मनोबुद्धिर स्थानम उच्चते अधिष्ठानम उच्चते, तीन स्थानों पर ये एनिमी का निवास है, अड्डा बनाया उसने, और वो है इंद्रिय, senses, dusra hai man, aur tisra hai buddhi. Bahar se jaise vishayon ka dhyan kiya, matlab humne invitation bheja un vishayon ko, yes kham dhyan hi to kar rahe hai, unko niyamantrit kar rahe hai, amantrit kar rahe hai, aa jao. सारे द्वार खुले हैं. नव द्वार पूरे गे है भगवान. ये गेह कैसा है? ये शरीर एक महल है, प्रासाद है, जिसके कितने गेट्स है? नाइन गेट्स. नव द्वार पूरे पूर होता है ना, ये पूर मायापुर, ये पूर जगन्नाथपुर या पुरी, तो ये भी पूर या पुरी है और इसके नौ द्वार है. तो जो ध्यान विषयों का ध्यान करने वाला व्यक्ति तो अपने सारे गेट्स क्या करता है, ऐसे खुले छोड़ देता है ताकि विषय आ जाए. काम नाम का शत्रु ऐसे ही प्रवेश कर सकता है, कोई रोकथाम नहीं. तो इंद्रियों ने उनको आने दिया अंदर, फिर वहां से शत्रु कहां तक पहुंचता है? मनः षष्ठाणि इंद्रियाणि. इन पांच इंद्रियों को जब उसका कब्जा किया शत्रु ने, उसके बाद पहुंचता है ये शत्रु कहां? मन तक पहुंचता है. और वहां से भी अगर आगे बढ़ेगा तो और खतरनाक है उस व्यक्ति के लिए. और वो स्थान है बुद्धि. बुद्धि को भी कंट्रोल किया शत्रु ने तो फिर फिनिश्ड. इसलिए भगवान उस गीता के श्लोक में क्या कहते हैं, बुद्धि नाशात प्रणश्यति. तो बुद्धि की तुलना की है किसके साथ? ड्राइवर के साथ, चालक के साथ, या कैप्टन के साथ. विमान के पीछे लोग बैठे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़े कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई तो एक बार चल जाएगा पीछे के जो इंद्रिय कहिए, मन कहिए. लेकिन कैप्टन अगर वही कुछ पी के खा के, अगर उसका अगर सिर अब क्या कर रहा है, देन एवरीवन इज इन ट्रबल. तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति विमान में या गाड़ी में कैप्टन या ड्राइवर होता है. तो हमारे जीवन में भी बुद्धि है, बुद्धि की का वो भूमिका या रोल है हमारे जीवन में. तो उस एनिमी को, उस शत्रु को, वो इंद्रियों के द्वार से भी प्रवेश किया, मन के पास पहुंच गया, मन को भी नियंत्रित कर रहा है ये काम वासना. और उसके उपरांत अगर बुद्धि को भी पर भी कब्जा करता है तो फिर बुद्धि नाशात प्रणश्यति. और प्रायः देखा जाता है कि लोग बुद्धू है, इसलिए सारा संसार विनाश की ओर ही अग्रसर है. तो इससे बचना है तो ठीक है, भगवान ने शत्रु कौन है ये बता दिया, शत्रु के स्थान कौन कौन से ये भी बता दिया, शत्रु सबसे अधिक बलवान है ये बात भी बताई. तो अभी उपाय क्या है? तो भगवान उसी तीसरे अध्याय में कहते हैं, नियम इंद्रियाणि नियम्य आदौ. कहते हैं आदौ मतलब इन द बिगिनिंग, शुरुआत. तो शुरुआत करें कहां से हम? इंद्रियाणि नियम्य आदौ. नियम्य नियमित करके, नियंत्रित करके. किनको नियंत्रित करके? इंद्रियाणि नियम्य आदौ. यहां से शुरुआत करनी होगी. और फिर उसमें भी सेवन मुखे ही जीवादो. किस इंद्रिय से शुरुआत करो? जिह्वा से शुरुआत करो, जिह्वा नामक इंद्रिय से शुरुआत करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपो जो तप भी है, ये जप तप भी है, और इस तपस्या से हम लोग शुद्ध होंगे। तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम यस्मात् शुद्धे ब्रह्म सौख्यम त्वम अनंतम। और ये तप करने से, ऐसे तपने से जिस सोने को तपाया जाता है अग्नि में, तो फिर वो सोना चमकता है। पहले कुछ काला पड़ा होता है सोना, कुछ दाग है, कुछ कलंक है, तो उसको अग्नि में रखो तो उसके और जो धातु का धातु मिश्रित हुए हैं, तो आग में रखने से वो अनअलॉयड बनता है। अनअलॉयड, अलॉयज अनअलॉयड, ये उसे इज इज फिजिक्स और केमिस्ट्री, इज केमिस्ट्री। भक्ति को भी कहा अनअलॉयड। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनअलॉयड, प्रभुपाद ने इस शब्द का उपयोग किया है। तो कुछ धातु है जो कई धातु मिला के अलग अलग धातु बनाते हैं आजकल साइंटिस्ट, तो अलॉयज कहते हैं, अलॉयज। लेकिन फिर उसको अलग अलग करना, एक एक धातु, ये तो केवल एक ही धातु, मतलब वो अनअलॉयड है, और धातु उसमें नहीं है। तो उसी प्रकार हम तपस्या करेंगे, जप करेंगे, तो इस तप से और जो ज्ञान मिश्रित और कर्म मिश्रित, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान का मिश्रण हुआ है, कर्म का मिश्रण, कर्मकांड, ज्ञान कांड, और तो उससे भी तो ये भौतिक कांड तो है ही, तो इनसे हम लोग मुक्त होंगे। या भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम। निष्काम मतलब अनअलॉयड, कृष्ण भक्त निष्काम। और लोगों तो लोग तो अलॉयड है, भुक्ति की कामना, कोई भुक्ति भोग की कामना, कोई मुक्ति की कामना, या कोई सिद्धि की कामना, कामना तो है, अब तक भी कुछ कामना चल रही है, काम है, लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कृष्ण भक्त ही शांत है, क्यों? शांताकारम, भगवान जो शांताकार है, भगवान का आकार कैसा है? शांताकारम, शांताकार के ओम शांति, भगवान के आकार से ऐसी शांति, शांति के स्रोत है भगवान, या भगवान के विग्रह, भगवान का आकार। इसी लोग जब मंदिर में आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? हाँ, यह शांति है, या कितनी शांति है, शांति होगी ही, क्योंकि शांताकार समक्ष जो खड़े हैं। तो ऐसे शांताकार से संबंध प्रस्थापित करेंगे भक्ति योग से, तो कृष्ण भक्त निष्काम, कोई एजिटेशन नहीं है, कोई मन विचलित नहीं है, इंद्रियां नहीं खींच रही इधर, कान इधर खींच रहा है, और क्या, नाक इधर खींच रहा है, एक सुपर बाजार से दूसरे हाइपर बाजार और तीसरे जंबो की ओर खींचातानी हो रही है, बेचारा खींचा जा रहा है। शॉपिंग की बड़ी लिस्ट है, घर वाली तो घर में बैठे बैठे लिस्ट बनाती रहती है, और बेचारा बेचारा कमाते रहता है, घर की रखवाली क्वीन होती है, इसके बाद सारी चाबियां होती है, चाबी का गुच्छ लेके घूमती रहती है, इंडिया में देखते हैं। और दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणी नवा, फिर सूर्योदय होते ही इसको पहले स्मरण होता है, अर्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? कुटुंब भरणी नवा, कुटुंब का पालन पोषण करना है, और कितने सारे इंद्रियों के विषय की आवश्यकता, इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट है, इतनी सारी विज्ञापना चल रही है, रात दिन कमर्शियल चल रहे हैं, यस यू मस्ट बाय दिस, यू मस्ट गेट दिस, यू मस्ट ड्रिंक दिस, यू मस्ट एम्ब्रेस दिस, यू मस्ट स्मेल दिस, यू मस्ट 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 मस्ट। इसका कभी सोचा भी नहीं था हम लोगों ने, इतने सारे प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर गुड्स। पहले कितने छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, या ऐसा समय था कि दुकानें हुआ भी नहीं करती थी। आपके पास का गेहूं है, ठीक है हमें दे दो, या आप ये क्या ले लो उसके बदले में, हाँ दूध ले लो, हमारे पास गेहूं है, आपके पास दूध है, या और क्या क्या है, हमारे पास सब्जी है, आपके पास क्या है, कपड़े हैं, और किसी के पास कुछ है। ऐसे बार्टरिंग होता था, एक्सचेंज। वो जो फल वाली आई थी फल बेचने के लिए, क्रीणी भो फलानी, क्रीणी भो फलानी, फल लो मीठे ताजे फल लो, और ऐसी घूम रहे थे नंद भवन के अगल बगल में वो फल वाली। तो कृष्ण आए, पैसे लेके आए थे, क्या लाए थे, कुछ धान अन्न कुछ उसको दिए और फल लिए। तो हुआ तो काम वासना का इतना प्रचार है, और कामी होना ही स्टैंडर्ड माना जाता है। जो जो व्यक्ति अधिक कामी है, कामुक है, तो वह इस काम वासना से बचना है तो प्रेम में प्रेमी बनना होगा, प्रेम सीखना होगा, कृष्ण से प्रेम करना अगर हम सीखते हैं तो इस संसार के काम वासना से हम बच सकते हैं। ये जो चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं भागवतम में, ऐसी चर्चा कई नहीं है। जो भौतिक लोग हैं उनमें तो है ही नहीं, लेकिन जो धार्मिक लोग है, जो धर्म अलग अलग धर्म, अब सिट डाउन, क्या चल रहा है सब, न तो क्रिश्चियनिटी, न तो हुआ इस्लाम, न तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऐसी चर्चा नहीं है। तो हमारा, हम किस कैसे बंधन में है, क्या बांध रहा है हमें, कौन प्रेरित कर रहा है हमें, किसके बंधन से हमें मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है तो किससे बंध मुक्त होना है, काम से मुक्त होना है। काम का बंधन है यही अगर पता नहीं होगा तो हम कैसे मुक्त होंगे। यह इतना स्पष्ट किया जा रहा है, वैसे लोग पसंद नहीं करते, इतना स्पष्टीकरण नहीं चाहते, वे वैसे लीला ही सुनना चाहते हैं, ऐसी सिद्धांत की बात, कुछ ज्ञान की बात, कोई बंधन के कारण की बात लोग कम सुनना चाहते हैं, सीधे लीला ही सुनना चाहते हैं। लेकिन अन्य जो नाम के धर्म जो अब उत्पन्न हुए हैं, वैसे धर्म तो उत्पन्न हो नहीं सकता। धर्म तो, धर्म मतलब शाश्वत, जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है उसका क्या होता है आगे, हाँ, या उसका उदय होता है, उसका अस्त भी होगा, जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी होगा। जातश ही ध्रुवम मृत्यु भी कहा है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु है। तो कई सारे धर्म, कुछ धर्म अब जन्मे हैं, पैदा हुए, उत्पन्न हुए हैं। तो हम लोग एक सेफ कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ईर्ष्या द्वेष की आवश्यकता नहीं है। जस्ट सिंपल कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन ये है कि जिसकी भी शुरुआत है उसका अंत है। तो ये कुछ धर्म सीन पर आए हैं, लेकिन कहां भागवत धर्म, इसका आधार श्रीमद् भागवत ही है। हमारे धर्म का बुक्स आर द बेसिस, तो वो बुक कौन सा है? श्रीमद् भागवत वो बुक है, वो ग्रंथ है, वो शास्त्र है, धर्म का आधार है। और इस धर्म का नाम भी भागवत धर्म है, जो सभी जीवों का धर्म है। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है उन सभी का धर्म एक ही धर्म है, और वो है भागवत धर्म है। सभी का धर्म एक ही है, और एक नाम दे सकते हैं उस धर्म को, तो वह है सनातन धर्म। ये भी नाम उचित है, क्योंकि सनातन मतलब शाश्वत, नो बिगिनिंग नो एंड, जो धर्म होना चाहिए। धर्म की परिभाषा ही यही है, जो शाश्वत है वो धर्म है, जो अशाश्वत है, जैसे कई बातें अशाश्वत है, टेम्पररी है, तो धर्म ऐसे नहीं हो सकता। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश है, सभी मनुष्य, सभी स्त्री पुरुष भगवान के अंश है, एक ही भगवान, और वे सनातन है, तो उनका धर्म भी सनातन होना चाहिए, और है भी। कुछ लोग अगर समझ रहे कि नहीं नहीं हमारा ये धर्म नहीं, हमारा और ही धर्म है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आने वाले कुछ 500, 1000, 5000 वर्षों में ये सब इसमें परिवर्तन होने वाला है, और पुनः धर्म की स्थापना होगी। धर्म धर्म संस्थापनार्थाय यह संकीर्तनैक पितरौ, ये संकीर्तन आंदोलन के फाउंडिंग फादर्स दो है, और वे है गौरनिथाय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो वे धर्म की स्थापना प्रारंभ किए 500 वर्ष पूर्व, और ये धर्म की स्थापना होते 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 अब श्रील प्रभुपाद इसको कुछ ऐसा रूप दिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक संघ बनाए, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, केवल 40 वर्ष पूर्व, और अब ये संघ, ये धर्म संसार के 160 देशों में पहुंचा हुआ है। करीब आपने शायद सोचा इट्स नॉट अ बिग नंबर, नथिंग, मैं तो सोच रहा था इस बिग नंबर से आप लोग कहोगे हरी बोल, कहो हे गुड, यू आर नॉट सरप्राइज, आपका एक्सपेक्टेशन कुछ हायर था। लेकिन ये 40 वर्षों में इतना, 40 वर्षों में इतना हो सकता है, तो इन अनादर 40 ईयर्स कल्पना करो, अनादर 40 ईयर्स केवल दुगुना नहीं होगा, अनादर 40 ईयर्स उसका दुगुना नहीं, इट जस्ट मल्टीप्लाइज, 2 का 4, 4 का 16, और 16 का हाउ मेनी 624, या 16 into 16, ओके 256, एंड लाइक दैट विल मल्टीप्लाई। इस प्रकार ये आंदोलन फैलता रहेगा, तो सब स्नपनम, सर्वात्मा स्नपनम, सब नहाएंगे, फिर सबका अभिषेक कराएगा। ये परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन जो है, सर्वात्मा स्नपनम, सभी आत्माओं का, या हमें भी जो आत्मा मतलब शरीर भी है, आत्मा मतलब मन भी है, आत्मा मतलब इंटेलेक्चुअल बीइंग, तो अपने इंटेलिजेंस के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, वो बुद्धिजीवी लोग भी है, या सोल भी है, तो ये सारे का सर्वात्मा स्नपनम, बेदिंग होगा, स्नान होगा, दे विल ऑल ड्राउन इस संकीर्तन आंदोलन में, तो कोई बच नहीं पाएगा। ये आंदोलन इतना फैल जाएगा कि कोई टाल नहीं सकता फिर इस आंदोलन को, कोई साक्षी के रूप में बगल में खड़ा नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, आई हैव नथिंग टू डू, यू विल बी, ऐसी एक वेव आ जाएगी, एक संकीर्तन पार्टी पीछे से आएगी, उसको ऐसे ढकेल देगी। और शिकायत नहीं करेगा वो, क्योंकि तृप्त करता है। प्रतिपदम पूर्णामृत रसास्वादनम, जो जब जो दूर से देखता है वो, फिर उसके तर्क वितर्क चलते हैं, लेकिन जो कूद पड़ता है इस सागर में, अवतीर्णे गौरचंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे, महाप्रभु प्रगट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चंद्रामृत में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, अवतीर्णे गौरचंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे, वही सब्जेक्ट मैटर है वैसे, काम और प्रेम। और उनके पास प्रेम नहीं है, और धर्म प्रेम की बात नहीं करते हैं, मैक्सिमम कुछ ऑ एंड रेवरेंस, कुछ भगवान के प्रति कुछ ईश्वर भाव रखते हैं थोड़ा सा, प्रेम की भाषा नहीं बोल सकते। तो प्रेम उपमार्थो महान, प्रेम पंचम पुरुषार्थ है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया और पहले किसी ने नहीं दिया था, ऐसा धर्म है। तो काम का शत्रु है प्रेम, काम से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति से फिर काम को हम लोग ठुकरा सकते हैं। तो काम से लिप्त, कामांध, काम के कारण अंधा बना हुआ आजकल का मनुष्य या मनुष्यों का समाज काम से तभी मुक्त होगा जब प्रेम का सागर उसे प्राप्त होगा। और धर्म न तो हिंदू धर्म न तो और भी जो धर्म अस्तित्व है वो काम वासना से मुक्त करने का उपाय तो प्रेम है, वो दिया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। तो प्रेम सागरे अवतीर्णे गौरचंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे एन मज्जंती मज्जंती ते महा अनर्थ सागरे, कहा। तो जो लोग क्या नहीं करेंगे, इस प्रेम सागर में जो नहाएंगे नहीं, इस प्रेम सागरे प्रेम सागर में जो कूदेंगे नहीं, ये न मज्जंती मज्जते, उनके लिए फिर एक ही सागर बचता है, वो विषयों का महा अनर्थों का सागर, विषयों का सागर महा अनर्थों का सागर, दो ही सागर है। एक प्रेम सागर प्रबोधानंद सरस्वती समझा रहे हैं, दो ही सागर है, एक प्रेम सागर और एक अनर्थों का विषयों का सागर, काम क्रोध इत्यादि का सागर। तो चैतन्य महाप्रभु विस्तीर्ण विस्तार कर रहे हैं। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, उन्होंने इस सागर का और विस्तार किया। प्रभुपाद कहा करते थे, चैतन्य महाप्रभु ने तो कृष्ण भावनामृत संघ आंदोलन भारत में ही इसका प्रचार प्रसार किए, और भारत के बाहर प्रचार प्रसार का कार्य वो छोड़े थे, ताकि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ वो कार्य करेगा। तो कार्य अब जारी है। तो जैसे भी इस प्रेम सागर का विस्तार अगर हम कर सकते हैं, जो हमारा जाने दाखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश महाप्रभु का आदेश है, तो आदेश का पालन हम करते हैं, तो उसी के साथ ये प्रेम का सागर का विस्तार होगा और अधिक अधिक लोग इस सागर में प्रवेश करेंगे, कूदेंगे नहाएंगे और पूर्णाम प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपश्य दर्शन आदरते वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वो भी बात है। और ये सागर कैसा है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ सागर कैसा है, यह इसकी क्या विशेषता है, आनंदम्बुधि वर्धनम। ये आनंदम्बुधि मतलब अम्बुधि मतलब सागर, आनंदम्बुधि प्रेम सागर, आनंदम्बुधि सेम थिंग, एक ही बात है। आनंदम्बुधि वर्धनम, तो इंडियन ओशन अगर वर्धित होगा तो क्या होगा, जल समाधि। इंडियन ओशन कोई सुनाई भी दे रहा है, वो इंडियन ओशन है क्या? हियरिंग समथिंग आ रहा है, तो उसका वर्धन होगा और बढ़ेगा, अपनी सीमा को, सीमा का उल्लंघन करेगा, बीच से भी आगे बढ़ के कॉटरबॉर्न और कहां कहां। तो ये प्रभुपाद कहे, एक समय मॉर्निंग वॉक में थे प्रभुपाद, हवाई में मॉर्निंग वॉक पर, तो बीच में प्रभुपाद रुके तो सारे शिष्य उनके अगल बगल में खड़े हुए, प्रभुपाद कुछ कहना चाह रहे थे, भक्त समझ ही गए थे, तो प्रभुपाद ने कहा यस, भगवान ने इस समुद्र को आदेश दिया है, तुम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सौचरा, ही हैज ऑर्डर्ड, यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे प्रभुपाद ने अपना साक्षात्कार या विचार भक्तों को सुनाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो लाया प्रेम का सागर, उसको विस्तृत किया, वो कैसा है? आनंदम बुद्धि वर्धनम। तो ये आनंदम बुद्धि वर्धनम अधिक वर्धित होता जाएगा, हम स्वयं इस पर अमल करेंगे, हमारे मन में प्रेम की स्थापना, प्रेम सागर को उदित करेंगे, हमारे परिवार के सदस्यों को भी उसमें डुबाएंगे इस प्रेम सागर में, और फिर पड़ोसियों को, फिर और मोहल्ले के जो लोग हैं और देश के, लाइक दैट, यथा संभव, यथा शक्ति, जितना भी बड़ा सर्कल हम बड़ा सर्कल बना सकते हैं, अपना प्रभाव डाल सकते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और अपनी परंपरा की ओर से। उसी के साथ ये जो काम नामक शत्रु का जो प्रभाव है उससे हम बचेंगे, और इसी के साथ वैसे परफेक्ट सोसाइटी, एक सभ्य समाज की स्थापना होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रभुपाद से पूछा कि आप अपने शिष्य या फॉलोअर्स को कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे, आपसे क्या, कैसे हो आपके शिष्य, आप कहिए, थोड़े में कहिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि लाइक अ जेंटलमैन, वो जेंटलमैन होंगे, जेंटलमैन, फिर लेडीज भी आ गई, जेंटलमैन, जेंटल होंगे, सभ्य होंगे, वेल बिहेव्ड, ये मतलब जेंटलमैन। ये नहीं कि जेंटलमैन का साइन तो लगाया है एयरपोर्ट के टॉयलेट के सामने, ये बाथरूम किसके लिए है? फॉर अ जेंटलमैन। फिर वो बाथरूम से जब सिक्योरिटी की ओर जाता है, एक हैंड्स अप, इतनी जांच पड़ताल होती है, बूट निकालो, इन अमेरिका वॉच, दे टेक योर वॉच। तो व्यक्ति कहते हैं, कम ऑन, आई जस्ट यूज द बाथरूम, आई एम जेंटलमैन, आई यूज दिस जेंटलमैन्स बाथरूम, आई मस्ट बी जेंटलमैन, लाइक ये जेंटलमैन के लिए बाथरूम बनाया आपने, तो आर यू थिंकिंग आई एम अ थीफ, आई एम अ रोग, आई एम अ टेररिस्ट, हू एम आई, क्या सोच क्या रहे? सो दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ तो नाम तो सो कॉल्ड जेंटलमैन रह गए, वैसे पोटेंशियली हर व्यक्ति तो कोई आतंकवादी या कुछ ऐसा बन ही रहा है, उनका भी दोष नहीं है और सिक्योरिटी वालों का। तो सभ्य समाज की स्थापना ही अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का लक्ष्य है। फिर ऐसे समाज में क्या होगा? मातृवत परदारेषु, सभी माताएं कैसी? मातृवत, सभी स्त्रियां, मेरी अपनी धर्मपत्नी को छोड़ के बाकी सब स्त्रियां मातृवत परदारेषु, माता के समान। फिर लोष्टवत परद्रव्येषु, अन्यों का, दूसरों का जो धन है, नहीं नहीं इसको मैं छू भी नहीं सकता, ऐसा ही मैं नहीं छूंगा। जैसे कूड़े करकट को मैं नहीं छूता हूं तो उसको भी मैं नहीं छूंगा, वो औरों का धन है। और आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, वो व्यक्ति पंडित है, ज्ञानी है, सभ्य है, जो सभी स्त्रियों को माता के समान, सभी के धन उनका धन है, वो मेरा नहीं है। और सभी जो मनुष्य है आत्मवत, वो मानो मैं ही हूं, वो व्यक्ति तो मैं ही हूं, एज इफ आई एम हिम। इसलिए उसको चोट पहुंचाना, उसको गाली गलौज देना, मानो मुझे मैं स्वयं को ही गाली दे रहा हूं। आत्मवत, उसकी चोरी करना मतलब मेरा खुद का ही कोई सामान मैं ही चोरी कर रहा हूं, कोई कष्ट पहुंचा रहा हूं दूसरों को, तो वो तो आत्मवत है। सर्वभूत सभी मनुष्य, मनुष्य ही नहीं पशु भी इंक्लूडेड, ये श्रील प्रभुपाद के आंदोलन और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की विशेषता है। बाकी धर्म जो आज पृथ्वी पर है उनको तो केवल मनुष्यों की चिंता है, और गाय और मनुष्य और पशु जो है वो समझते कि वो उनकी उनका भक्षण कर सकते हैं। और इसी के साथ वैसे आज का मानव दानव बन रहा है, लेकिन प्रभुपाद का जो आंदोलन है ऐसे मानव को दानव को क्या बना रहा है, मानव बनाने का प्रयास, या गो भक्षक को गो रक्षक बनाने का प्रयास यह हरे कृष्ण आंदोलन कर रहा है। तो इसकी सफलता तो उसी के साथ होगी, कितना हम लोग प्रेम का अनुभव, कृष्ण प्रेम जो कमोडिटी है, पदार्थ है, उसको अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तभी वैसे कृष्ण भावना आंदोलन फैलेगा। कुछ बाहरी मंदिर आश्रम ये सब इनकी भी आवश्यकता है, ये साधन है, लेकिन ये सब हो रहा है इसी के तो उतनी मात्रा में कृष्ण प्रेम भी प्राप्त हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि नहीं, ये भी हमें देखना होगा। हमारे आंदोलन का आधार है प्रेम, प्रेम के आधार, प्रेम से प्रेरित, प्रेम है तो प्रेम से प्रेम से प्रेरणा मिलेगी। संसार के लोगों को काम से प्रेरणा मिलती है, उनकी स्फूर्ति काम स्फूर्त करता है बद्ध जीवों को, और भगवान के जो कृष्ण भक्त है उनको ये प्रेम उनको प्रेरित करता है। जैसे अर्जुन ने पूछा था कौन है, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति अनिच्छन अपि, तम प्रेम से जब प्रेरित होंगे तो हम नहीं चाहते हुए भी हम लोग प्रचार के लिए जाएंगे। अरे कौन है, क्या है, मैं कहां जा रहा हूं, कौन मुझे ढकेल रहा है बुक बैग के साथ बाहर, कौन है शक्ति जो मुझे मृदंग के साथ मुझे बाहर खींच के ले जा रही है, कौन है ये शक्ति जो मुझे स्लीपिंग बैग से बाहर निकाल रही है 3:30 AM। वो प्रेम है, प्रेम से प्रेरित। और फिर भक्तों के संग में जब होते हैं तो हम वैसे कभी कभी नहीं चाहते हुए भी, साधना भक्ति है तो हम करते हैं कुछ कार्य एज अ ड्यूटी, कोई कर्तव्य, फिर धीरे धीरे वो स्वाभाविक बनता है, स्वभाव बनता है, हमारा स्वरूप को हम जानते हैं समझते हैं तो फिर सभी कार्य स्वाभाविक होते हैं। तो भक्ति का कार्य वैसे स्वाभाविक है, मनुष्यों के लिए भक्ति का कार्य, प्रेम का कार्य स्वाभाविक है, और काम से प्रेरित कार्य तो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। तो जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, उसको हम स्वाभाविक समझ रहे हैं, और जो स्वाभाविक है उसको कुछ बोझ समझ रहे हैं, ये कृत्रिम या कोई ये कोई फॉरेन पराई बात, तो ये भी माया है। जो नहीं है उसको है समझना। तो श्रीमद् भागवतम हमें समझाता है सही गलत का पता लगवाता है, हमें मदद करता है, हमें वो बुद्धि देता है ताकि सद असत, जब बुद्धि का कार्य है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये काम है, ये प्रेम है, कैसे समझेंगे? बुद्धि के मदद से। तो सुखदेव गोस्वामी बुद्धिमान है, हमको बुद्धि नहीं, हम बुद्धू है तो कम से कम क्या कर सकते हैं? सुखदेव गोस्वामी को सुन तो सकते हैं, या सुखदेव गोस्वामी के साथ और भी बुद्धिमान लोग हैं, और वो कौन कौन है? स्वयंभू, नारदः, शंभु और प्रह्लाद, जनक, भीष्म, भीष्म एक रह गया, कौन? बलिर्वैया सकीर वयम, वयम मतलब हम, ये नौ हो गए, एक पंक्ति रह गई, मनुर, मनु रह गए, प्रह्लाद, जनको, भीष्म, ओके, प्रह्लाद, जनक, भीष्म, ये कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए, द्वादश भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत को या भागवत धर्म को जानने वाले ये 12 अथॉरिटीज है, ओरिजिनल अथॉरिटीज, टॉप क्लास, टॉप नॉच अथॉरिटीज, और भी है असंख्य है। ये वैशिष्ट्य, ये विशेषता है हरे कृष्ण आंदोलन या भागवत धर्म की। कितने अभागी है क्या कहा जाए, वो क्रिश्चियन कह सकते हैं सन ऑफ द लॉर्ड, वन सन, दे आर टॉकिंग ओनली ऑफ वन सन, एक पुत्र, या यू कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस और जीसस के साइज के हाइट के यू विल फाइंड एनी वन हायर देन जीसस के क्वालिटी के कॉन्शियसनेस के, यू विल फाइंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सन्स ऑफ द लॉर्ड, जिनसे हम लाभान्वित हो सकते हैं। खोलिए रामायण, खोलिए कितने सारे मिलेंगे, शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज। महाभारत खोलिए, फिर श्रीमद् भागवतम है, फिर चैतन्य चरितामृत, तो सारा आध्यात्मिक जगत ही पहुंचा था। तो जिस मसीह का भी स्वागत है, हम उनका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, एक आचार्य के रूप में भी स्वीकार करते हैं, प्रभुपाद भी तात्पर्य में, लेकिन why one? भगवान को आप क्यों मर्यादित कर रहे हो? अगर वो लॉर्ड का वो सन है, यहां भी कई लोग बैठे होंगे, कितने पुत्र हैं? 10 अवतार, कितने बच्चे हैं? 2। अगर इनके 2 हो सकते तो भगवान का 1 ही, या कोई 3, 4, 5 वाला भी कोई है? सुंदरलाल, योर पेरेंट्स हैड हाउ मेनी चिल्ड्रन? 6। तो क्या हिज फादर इज भगवान का 1 और इनके पिता के 6, ये कहां का गणित है? वाई वन? इस प्रकार स्वयं को ऐसा लिमिटेड कर रहे हैं। ये भी तो भगवान के सन, कितने सारे सन्स। और फिर और भी धर्म देखिए, टॉकिंग ऑफ वन पर्सन, गुरु नानक, उनका भी एक हो गया सन, गुरु नानक सिखों के हुए, गुरु नानक तो मोहम्मद हो गए, या कुछ और भी थोड़े कुछ नाम हो सकते हैं, लेकिन यहां देखिए कितने नाम और हाईएस्ट लेवल। वैसे डिफरेंस तो वैसे क्वालिटी का है, तो कृष्ण भावना मतलब ये प्रेम की भावना है, प्रेम का धर्म है, प्रेम, प्रेम से ही हम लोग काम प्रेम प्राप्ति से ही संभव है हम काम को ठुकरा सकते, काम से मुक्त हो सकते हैं। और हम सभी को मुक्त होना, केवल सन्यासी को ही नहीं, वो बताना थोड़ा रह गया। भगवान के धाम में जाना तो हर पुरुष हर स्त्री को काम वासना से मुक्त होना होगा। आप नहीं कह सकते आई एम नॉट अ सन्यासी, यू विश टू गो बैक टू होम, यस यस आई वॉन्ट टू गो बैक टू होम बैक टू गॉड हेड, बट यू कैन नॉट गो, आप लोग नहीं जा सकते जब तक काम वासना है। तो दास बन के चैतन्य महाप्रभु, मैं तो दास हूं बस, मैं सन्यासी नहीं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध, मैं दास हूं। गोपी भरतुर दास कमलयो दास दासानु दास, तो हम सब जो दास है जीवेर स्वरूप हो नित्येर कृष्ण दास, कृष्णेर नित्य दास। तो वो दासत्व स्वीकार करके कृष्ण में प्रेम जब हम जगाएंगे उत्पन्न करेंगे तभी हम लोग भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। आई थिंक ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग शायद होता है क्या। हाँ ये तो ये काम वासना से मुक्त होना तो दिस इज गुड फॉर सन्यासी, दिस इज मेंट फॉर सन्यासी के लिए ठीक है, लेकिन हम तो गृहस्थ है, ठीक है आप कुछ लाइसेंस वगैरह तो है लेकिन वो भी तो जीवन भर के लिए नहीं है। वो लाइसेंस कितने वर्ष के लिए, कुछ वर्षों तक ही होता है और तो फिर दूसरे आश्रम है और भी और आगे बढ़ना है। लेकिन काम से लिप्त जो इस संसार के मनुष्य है उनके लिए एक ही आश्रम, पहला और अंतिम आश्रम कौन सा आश्रम, गृहस्थ आश्रम। उसे शूद्रों के लिए एक ही आश्रम बताया है। आप ब्राह्मण हो तो आपके लिए चार आश्रम है, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण संन्यास ले सकता है, वानप्रस्थी बन सकता है, गृहस्थ बन सकता है, ब्रह्मचार्य से उसका जीवन शुरू होता है। आप अगर क्षत्रिय हो तो आपके लिए तीन आश्रम है, संन्यास नहीं है आपके लिए। आप वैश्य हो तो आपके लिए दो आश्रम है, और आप शूद्र हो तो आपके लिए एक ही आश्रम है। और कलयुग में लोग कैसे हैं, कलौ शूद्र संभवः, इसीलिए एक ही आश्रम चल रहा है गृहस्थ आश्रम। लेकिन ऊपर उठना होगा, आवश्यकता है ब्राह्मणों की, प्रभुपाद कहा करते थे। आजकल की सोसाइटी या उसको परफेक्ट सोसाइटी बनानी है, आजकल की सोसाइटी हेडलेस सोसाइटी, हेडलेस, तो हेड कौन है, ब्राह्मण हेड है, तो हेड ही नहीं है, हेडलेस। तो प्रभुपाद चाहते थे ब्राह्मण ब्राह्मण हो, हरे कृष्ण भक्त कौन बने, ब्राह्मण बनेंगे फिर सन्यास भी ले सकते हैं सब, फिर सभी आश्रम को शूद्र नहीं रहेंगे। एनी क्वेश्चंस कमेंट्स। आर्य भी जब 7 दिवस अपना प्रवचन सुनाए चैतन्य महाप्रभु को, फिर पूछे कोई प्रश्न है, उनका भी कोई प्रश्न नहीं था, वो बात अलग। क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य सब मायावाद ही सुना रहे थे, इसीलिए कुछ तो हम कह दे सर वाह। तो पुनः मिलेंगे, रामनवमी भी मनाएंगे आप सभी भक्तों के साथ।